तमाशा, ये वाला अरमान ये इतनी आसानी से राखी कैसे बनवा सकता है? अब आगे और अभिमान के एक बार बुलाने पर ये कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं इस वक्त दादाजी मन ही मन गहरी सोच में डूबे हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून भी था कि चलो जैसे तैसे ही सही, कम से कम बच्चियों का दिल तो रखा जाएगा और सब अरमान को राखी बांध देंगी। वहीं ध्रुव, आहान, सुमित, आकाश, सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट खिली हुई थी। सभी अपनी पत्नियों को ही टकटकी लगाए देख रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नियां अरमान को राखी बांधने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड दिख रही थीं। वहीं सभी लड़कियों के चेहरों पर जबरदस्त चमक और मुस्कुराहट साफ छलक रही थी। वहीं वसुंधरा और वीर के कमरे में, वसुंधरा वीर के साथ अपने कमरे में मौजूद थी। वीर बार बार अपनी आंखों से अपने हाथ पर बंधी राखी को एकटक देख रहा था। वसुंधरा ने तुरंत वीर की पीठ थपथपाते हुए उसे आश्वासन दिया, कोई बात नहीं बेटा, अगर उन्होंने तुम्हें राखी बांध दी तो कम से कम इससे तुम इस घर में सेफ तो रहोगे, वरना मुझे डर था कि कहीं तू किसी भी घर की लड़की पर हाथ ना डाल दे और उसके बाद शायद उसका पति तुझे यहीं जिंदा ना दफना दे। देख, जैसे ही मैं सब ठीक कर दूंगी उसके बाद मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, लेकिन तब तक तू किसी के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अचानक कुछ याद करते हुए वसुंधरा वीर से पूछा, ये बता, अजीत ने तुझे कुछ दिया था क्या? तब वीर को याद आया कि अजीत ने उसे कुछ सफ़ेद पुड़िया दी थी। वीर ने झुंझलाते हुए तुरंत वो सफ़ेद पुड़िया निकालकर बिना ये पूछे कि इसमें क्या है वसुंधरा के हाथों में थमा दिया था। लेकिन वसुंधरा उस पुड़िया को देखकर एक रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। वहीं वीर अपने कमरे में जाते हुए सोच रहा था कि उसे किस तरह से अभिमान जी से बात करनी होगी ताकि वो उससे कम से कम कुछ छूट निकाल सके, क्योंकि लड़कियों की चाहत उसके दिल में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिलहाल दूसरी ओर रश्मि स्माइल करते हुए तुरंत थोड़ा आगे आई और उसने अरमान से सॉफ्ट वॉइस में कहा, अपना हाथ आगे करो। ये सुनते ही अरमान ने अचानक अपनी गर्दन तिरछी कर ली। अरमान को ऐसे अंदाज में गर्दन तिरछी करते हुए देखकर एक पल के लिए रश्मि के पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। अरमान की आंखों में बहुत बेरुखी थी। ये महसूस करके अपने आप ही रश्मि की टांगें कंपकंपाने लगीं। अचानक रश्मि को कांपते हुए देख अरमान रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और अचानक उसने रश्मि की राखी वाली थाली हवा में उछाल दिया और रश्मि अपने कानों पर हाथ रखकर जोरों से चीख पड़ी। लेकिन अरमान यहीं नहीं रुका, उसने राधिका, वंशिका और रौनक की थालियां भी हवा में एकदम से उछाल दीं। अब चारों लड़कियां अपने कानों पर हाथ रखकर जोरों से चिल्ला उठीं। ये दृश्य देखकर सभी का दिल तड़प उठा और सब सुन रह गए। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि अरमान ऐसी कोई हरकत करेगा। हवा में अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं मारिया का दिल पूरी तरह से टूट गया। सभी लड़के अपनी आश्चर्य भरी आंखों से एक दूसरे को ठिठक कर देखने लगे। लड़कियों की आंखों में आंसू थे, वहीं नानी माँ भी हैरान थी। किसी को भी इस हादसे की उम्मीद नहीं थी। हालांकि दादाजी को कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो पहले से लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली थी। जैसे ही सब थालियां जमीन पर गिरीं और वहां एक धमाके की आवाज गूंजी, अगले ही पल नानी माँ अपना आपा खोते हुए अरमान पर भड़कीं। अरमान, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? ये अपशगुन होता है और तुमने इसको तोड़कर सबका दिल दुखा दिया। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। नानी माँ की बात सुनते ही अरमान जोरों से हंसने लगा। अचानक उसने नानी माँ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और तंज भरी मुस्कुराहट से बोला, वाह, बहुत अच्छा ड्रामा रचा है तुमने ओल्ड लेडी। तुम जानबूझकर सिंघानिया मेंशन में बसने का प्लान बना रही हो, इसलिए अपनी बेटियों का इस्तेमाल करके मुझे राखी बंधवाना चाहती हो ताकि द ग्रेट अरमान सिंघानिया को अपने सस्ते से इमोशंस के चक्रों में फंसा सको। रियली ओल्ड लेडी, दिमाग काफी तेज है तुम्हारा, मानना पड़ेगा। फिर अरमान ने चारों लड़कियों की ओर कड़वाहट से देखा और तंज कसा, वैसे एक्टिंग काफी अच्छी कर लेती हो तुम लोग। फिर अरमान रौनक की ओर पॉइंट करते हुए अचानक बोला, इस लड़की ने पहले मेरे छोटे भाई आहान को फंसाने की कोशिश की, जब ये उसमें कामयाब नहीं हो पाई और उसे अपने जाल में नहीं फंसा पाई तो अब ये मुझे भाई बनाने चली है। रौनक को अरमान की बात सुनकर छटका सा लगा था और वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई थी। फिर अरमान ने सिर घुमाकर राधिका और वंशिका को घूरते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, राधिका, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, और शायद तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर कहीं भाग गया है। लगता है तुम अपना घर तक नहीं बसा पाई, क्योंकि तुम्हें यहाँ रहने का अच्छा खासा ठिकाना जो मिल गया है, या फिर ये कहो कि अब तुम्हारा इरादा अपने गरीब फटीचर पति के साथ रहने के बजाय इस महल जैसे सिंघानिया मेंशन में रहने का है, इसीलिए तुम यहाँ मुझे भाई बनाकर रहना चाहती हो। अरमान की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर सुमित और आहान बाकी सबने गुस्से में अपने हाथ की मुठ्ठियाँ कस ली। फिर वो सीधा रश्मि के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी आईब्रो सिकोड़ गई। उसने कुछ उखड़े अंदाज में उससे कहा, रश्मि, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। आज तक मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता आया था, लेकिन आज तुमने ये भाई वाला ड्रामा करके साबित कर दिया कि तुम्हें भी सिर्फ मेरे पैसों का लालच है। इसके अलावा तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब अरमान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा।
अब सब लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अब इस नाटक के बाद तुम लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगे। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकलो। अरमान के ये मुंह से शब्द सुनकर सबके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। वहीं ये सुनकर दादाजी की आंखें एक पल में ही कठोर हो गई और वो अरमान के पास आकर नाराजगी से बोले, अरमान ये क्या कर रहा है तू? जानता भी है तू क्या कर रहा है? अगर तुझे राखी नहीं बंधवानी थी तो साफ साफ मना दे देता। इस तरह का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरमान ने रूखेपन से दादाजी को घूरा और बेरुखी से मुस्कुराते हुए बोला, ओ तो मेरे द ग्रेट दादाजी को मेरी बातें ड्रामा लग रही हैं। इस घर की इमेज जो ये ओल्ड लेडी और उसकी बेटियां बर्बाद कर रही हैं, क्या वो आपको नजर नहीं आ रहा? हो क्या गया है आप लोगों को दादाजी? आप नहीं जानते औरतें सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए ये लोग पैसों के लिए मेरे आगे पीछे घूम रही हैं, ताकि मैं इनसे कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लूं और ये लोग आराम से इस घर में ऐश और आराम की जिंदगी गुजार सकें। अरमान के मुंह से ये शब्द सुनते ही आकाश के सीने में गुस्सा भड़क उठा और अब आकाश खुद को रोक नहीं पाया। आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों ही आगे बढ़कर बोले, अरमान अब बहुत ज्यादा हो रहा है, ये क्या कर रहा है तू? ध्रुव और आहान ने भी नाराजगी जताई, अरमान भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुमित भी तुरंत बरस पड़ा, अरमान तुम्हें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हो रही है, तुम सब लड़कियों को गलत समझ रहे हो। अभिमान जी भी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में धीरे से बोले, बेटा मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह की घटिया हरकत करोगे। अभिमान और बाकी चारों की बातें सुनकर एक पल में अरमान की आंखें कठोर हो गईं और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने हाथों से ताली बजाई, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया, फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अरे वाह ओल्ड लेडी, तुम तो बड़ी चालाक निकली। खुद को बूढ़ी, लाचार, बेबस दिखाकर अपनी बेटियों को आगे रखकर पहले से ही मेरे घर वालों को फुसला लिया। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई अरमान सिंघानिया के सामने ऊंची आवाज में बात कर सके,
लेकिन जब से तुम लोग इस घर में आए हो ये सब अरमान सिंघानिया से बहस करने लगे हैं और जवाब देने लगे हैं। मानना पड़ेगा ओल्ड लेडी। एक बात बताओ, कितने घरों को इस तरह से तुम लोगों ने मिलकर लूटा है और अपनी इन तीनों बेटियों को आगे करके किस किस के घर में घुसकर सबका रुपया पैसा छीनकर फिर फरार हो गई हो? अरमान के ये शब्द नानी माँ का गुस्सा भड़काने के लिए काफी थे। जैसे ही अरमान ने ये बदतमीजी की, नानी माँ का खून खौल उठा। अरमान के मुंह से ये शब्द सुनकर अगले ही पल नानी माँ थोड़ी तीखी आवाज में चिल्लाईं, अरमान बस कीजिए, हम अपनी बेटियों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। हम कब से आपकी फालतू और घटिया बातें सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाएंगे, समझे आप? नानी माँ की ऊंची आवाज सुनकर अरमान को झुंझलाहट हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तमतमाते हुए अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वहीं राधिका, वंशिका, रौनक और रश्मि चारों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके कानों में ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वे सब तो अरमान को खसी खुशी राखी बांधना चाहती थीं, लेकिन उसकी जहरीली बातें सुनकर उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। कोई कुछ भी कहने की सिचुएशन में नहीं थी, बस सिर झुकाए आंसू बहा रही थीं। अरमान को सबसे ज्यादा गुस्सा नानी माँ की ऊंची आवाज सुनकर आया था, क्योंकि आज तक उसके सामने किसी को सर उठाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो नानी माँ ने सीधे सीधे चिल्लाकर उससे बात की थी। वो तमतमाता कर चारों ओर यहाँ वहाँ अजीब तरह से देखने लगा। तभी टाइगर तुरंत वहाँ उसके पास आ गया। अरमान ने टाइगर और मारिया की ओर देखकर ऑर्डर दिया, इस ओल्ड लेडी और इसकी बेटियों को अभी और इसी वक्त घर से बाहर फेंक दो। उसकी आवाज़ हवा में किसी धारदार चाकू जैसी गूंज रही थी। ये ऑर्डर सुनकर एक पल के लिए टाइगर और मारिया दोनों ही ठिठक गए। उनके हाथ कांपने लगे। वे सोचने लगे, भला नानी माँ और सारी लड़कियों को इस तरह घर से कैसे निकाला जा सकता है। दादाजी तुरंत अरमान के आगे हाथ जोड़कर बोले, अरमान बस कर बेटा, क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? पागल हो गया है क्या? तो इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? दादाजी की आवाज़ में काफ़ी दर्द नजर आ रहा था, लेकिन तभी अरमान ने अचानक अपने सीधे हाथ की उंगली से अपने सर पर तीन बार टैप किया और फिर दादाजी की ओर उंगली दिखाते हुए इरिटेट आवाज में बोला, नॉट अगेन दादाजी, नॉट अगेन। आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान तुरंत आगे बढ़े। वे अपनी बीवियों को इस तरह घर से बाहर जाते हुए कैसे देख सकते थे? वे अरमान को रोकना चाहते थे, लेकिन अरमान ने अपने हाथ से उन्हें धक्का देकर दूर धकेल दिया। नानी माँ ने अरमान की आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, समझे आप? हम इस घर में रहते हैं क्योंकि ये हमारा घर है और इस घर से आप हमें नहीं निकाल सकते। इतना सुनते ही अरमान का पारा और चढ़ गया। उसने गुस्से से कांपते हुए अपनी जेब से बंदूक निकाली और सीधा नानी माँ पर तान दी। अब तो नानी माँ की आंखें पूरी तरह से फटने को तैयार थीं। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थीं कि अरमान उनके साथ ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है। नानी माँ को देखकर आहान घबरा उठा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो जल्दी से बोला, ये क्या हुआ अरमान भाई, तो किसी भी पल नानी माँ का भीजा ही उड़ा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ करो आकाश भाई, सुमित भाई कुछ तो करो। अगर नानी माँ को कुछ हो गया तो हम आस्था भाभी को क्या जवाब देंगे? कोई कुछ करो, कुछ तो करो प्लीज, कोई कुछ करो, ये अनहोनी होने से रोको। वहीं आकाश और सुमित एक दूसरे की ओर लाचारी से देखने लगे थे, लेकिन उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे आगे बढ़कर अरमान को रोक सकें या फिर कुछ बोल सकें, क्योंकि वो जानते थे जितना वो अरमान के करीब जाएंगे उतना अरमान भड़क उठेगा। लेकिन तभी दादाजी तुरंत नानी माँ के ठीक सामने आकर खड़े हो गए और अगले ही पल अरमान की बंदूक की नोक को अपने सीने पर रखते हुए बेपरवाही से बोले, अगर तू किसी को मारना ही चाहता है तो एक काम कर, पहले हमें मार डाल, अपनी बंदूक की सारी गोलियां हमारे सीने में उतार दे। वहीं अभिमान ये सारा ड्रामा लाचारी से देख रहे थे, लेकिन उस वक्त उनके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वे जाकर किसी तरह का कोई विरोध कर सकें। वो तो खुद अंदर से टूटे हुए थे। वहीं चारों लड़कियों को तो ऐसा लगने लगा मानो जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी आंखें केवल नानी माँ को देख रही थीं कि नानी माँ किस तरह से उनके लिए स्ट्रगल कर रही हैं। चारों को ही आज ऐसा लगने लगा था मानो जैसे उनके सर पर आज भी किसी बड़े का साया मौजूद है जो उन्हें हर मुसीबत से बचा सकता है। अपने दादाजी को यूं नानी माँ के सामने खड़ा होते देख अगले ही पल अरमान का पारा और ज्यादा हाई हो गया था। अरमान ने तुरंत बंदूक अपनी कनपटी पर लगा ली थी और दादाजी को धमकाते हुए चिल्लाया, अगर आप लोगों ने इस औरत को रोका या इसकी बेटियों को यहाँ रोका तो मैं इस बंदूक की गोली से खुद को मार लूंगा। अब दादाजी ने जैसे ही ये सुना उनके पांव पूरी तरह से थरथराने लगे। वे तुरंत चीखते हुए गिड़गिड़ाए, ऐसा मत कर बेटा, ये क्या कर रहा है तू? प्लीज ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। दादाजी हालात को भांप कर तुरंत ही घुटनों के बल नीचे बैठ गए और वो नानी माँ के सामने हाथ जोड़कर दबी हुई आवाज में बोले, मुझे माफ कर दीजिएगा बहन जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं अरमान अब तिरछा मुस्कुराया और नानी माँ की ओर देखकर रूखेपन से बोला, आप ये रोने धोने का ड्रामा बंद कीजिए और अभी इसी वक्त अपनी बेटियों को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। और डॉक्टर रश्मि, आपको भी अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आज ये साबित कर दिया है कि आपको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, इसीलिए आप भी यहाँ से निकल जाइए। और मिस्टर सिंघानिया यानी कि अभिमान जी को अगर डॉक्टर की ज़रूरत होगी तो मिनी हॉस्पिटल में और भी डॉक्टर मौजूद हैं, वो उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, लेकिन वो आपसे कोई इलाज नहीं करवाएंगे। अब ये दृश्य देखकर तो सबके सीने में गुस्सा भड़क रहा था। दादाजी की तरह बाकी सब भी पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे, क्योंकि वे चाहकर भी अब नानी माँ और बाकी लड़कियों को रोक नहीं सकते थे।